नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पाकिस्तान की वायुसेना ने ईरान के भीतर आतंकवादियों पर जवाबी हमले किए। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। ये कार्रवाई मंगलवार को पाकिस्तानी धरती पर ईरान के हमले के बाद की गई। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। ईरान ने फिलहाल हमलों के संबंध में कुछ नहीं कहा है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल ठिकानों पर हमला किया था, जिसको मीडिया ने आतंकवादी ग्रुप के 2 प्रमुख गढ़ के रूप में बताया। ईरान के इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जियो न्यूज़ के मुताबिक ईरान द्वारा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद इस्लामाबाद ने बुधवार को तेहरान से अपने दूत को वापस बुलाते हुए ईरानी राजदूत को निष्कासित करने की घोषणा की। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन की कड़ी निंदा की थी। साथ ही कहा कि ईरान द्वारा किए गए हमले में 2 निर्दोष बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के अपने समकक्ष से कहा कि तेहरान की ओर से किए गए हमलों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है। ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के 2 अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिलानी फिलहाल युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विदेश कार्यालय ने बुधवार रात एक बयान जारी करके कहा कि जिलानी ने बुधवार को ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि 16 जनवरी को ईरान की ओर से पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर किया गया हमला न केवल इस्लामाबाद की संप्रभुता का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी गंभीर उल्लंघन है। अमेरिकी सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले स्थानों पर बुधवार को मिसाइलें बरसाई। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम एशिया में इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के मध्य में यमन के हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी सेना की ओर से किया गया ये 4था ऐसा हमला है। इन हमलों से पहले अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि उसने यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों के रूप में दोबारा नामित किया है। गत शुक्रवार को भी अमेरिकी और ब्रिटेन के युद्धपोतों तथा युद्धक विमानों ने यमन में हुती विद्रोहियों के इस्तेमाल किए जाने वाले 60 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन प्रतिबंधों और सैन्य हमलों के बावजूद हुती विद्रोही वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों से बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार को भी यमन से हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले एक स्थान से ड्रोन हमला किया गया था। ये ड्रोन अदन की खाड़ी में अमेरिकी स्वामित्व वाले एक पोत पर गिरी थी। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराने पर ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कोरोना महामारी का असर आज भी कई जगह देखने को मिलता है। इसी बीच चीन का फितूर वाला दिमाग फिर कुछ खतरनाक करता दिख रहा है। चीन की तरफ से कोरोना के ही एक नए स्ट्रेन पर रिसर्च की जा रही है। इस नए स्ट्रेन का नाम GXP2V बताया गया है और इसके बारे में BioRxiv नामक रिसर्च साइट पर लिखा गया है। बताया जा रहा है कि इस नए वायरस का चूहों पर प्रयोग किया गया। पाया गया कि चूहों ने 8 दिन के अंदर ही दम तोड़ दिया। इस वायरस का दिमाग पर गंभीर परिणाम देखने को मिला। शरीर पर कई दूसरे भयंकर साइड इफेक्ट भी आए। चिंता की बात यह है कि माना जा रहा है कि ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। इसे कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब एक तरफ चीन अपनी तरफ से इसे रिसर्च कह रहा है, कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक इसे पागलपन बता रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जब कोरोना खत्म हो चुका है, इस प्रकार की खतरनाक रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन चीन का दावा है कि इस एक स्टडी के दम पर कोरोना वायरस को और करीब से समझा जा सकता है। जो रिसर्च की गई है उसमें चूहों को लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। रिसर्च के मुताबिक कुछ दिनों के अंदर में ही चूहों के फेफड़ों, हड्डियों, आँखों, श्वसन नली और दिमाग पर असर पड़ना शुरू हो गया था। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि सिर्फ 8 दिनों के अंदर में ही उनकी मौत हो गई। अब चीन की ये खतरनाक रिसर्च इस समय दुनिया को डरा रही है। इसका कारण ये है कि कोरोना भी चीन से ही फैला था। कैसे फैला इसे लेकर आज भी विवाद की स्थिति है। कुछ इसे लैब लीक बताते हैं तो कुछ चमगादड़ों द्वारा फैली एक महामारी के रूप में देखते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।